ध्यान अलग अलग किस्म से करने वाले लोगों को जब अंत में उस सहज ध्यान में आ जाते हैं तब उनको पता चलता कि ध्यान क्या चीज है और ध्यान करने पड़ते हैं। कि जैसे नरेंद्र पर रामकृष्ण ने संप्रेक्षण शक्ति बरसा दी, नरेंद्र का ध्यान होने लगा और उनको अनुभूतियां होने लगी, नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए सहज में ही। और खेतड़ी के महाराजा घोड़े छोड़कर खुद राजा रानी रथ खींचते हैं और विवेकानंद को बिठाते हैं। विवेकानंद बोलते हैं ये मेरा मान नहीं, मेरे को बेचकर चने खा जाएं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडित काशी में हैं और साधु हैं, फिर भी खेतड़ी के महाराजा मेरे को इतना सम्मान देते हैं, ये मेरे गुरु कृपा का प्रसाद है और कुछ भी नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में भी ऐसी एक घटना आती है कि मोहम्मद पैगंबर जब पैगंबर नहीं बने थे, 26 साल के थे, किसी माउंट पर, किसी पहाड़ी पर, माउंटन पर जा बैठे, प्रार्थना करते करते, हे मेरे मालिक, तू तो मुझे जानता, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ, मैं तुझे मिलना चाहूँ तो मुझे बहुत परिश्रम होगा, शायद फिर न भी मिल सकूँ, लेकिन तू मिलना चाहे तो मिल सकता है। मोहम्मद प्रार्थना करते करते अनकंडीशनल सरेंडर हो गए, अर्थात शरणागति योग का कुछ उनके मन में भाव आ गया होगा। अब ईश्वर की कृपा कहो, सुषुप्त अंतर्यामी ईश्वर की चेतना कहो, कोई योगी पसार होता हो उसके हृदय की कृपा कहो, जो भी कहो, मोहम्मद के शरीर में कंपन होने लगा। कंपन ऐसा होने लगा जैसे मलेरिया के बुखार में शरीर थर 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 कांपता है, ऐसे कांप रहा है। ताज्यो ताओ गुजराती माँ कहिए, जैसे थतर थतर था था। मोहम्मद आए घर और मिसिस मोहम्मद को कहा कि कुछ बुखार जैसा हो गया, रजाइयां डाल दे। घर की एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई, सारी रजाइयां डाल दी गई, फिर भी थतर थतर था थतर थतर था। देखो ये कांप रहा है ना, ऐसे ही शरीर कांप रहा था। उस समय मिसिस मोहम्मद की धर्मपत्नी 14 साल बड़ी थी, तब की बात है, वो 40 साल की थी और मोहम्मद 26 साल के थे। संसद आपको तो ऐसा नहीं हो सकता, जयराम जी की मिसेस संसद 14 साल बड़ी हो, संभव नहीं। एक गुजरात में एक ईमानदार नेता किसी संस्था का, जैसे बड़ी कोई संस्था थी, उसका डायरेक्टर हो गया। पढ़ा लिखा कम था लेकिन उसकी सच्चाई और कार्य कुशलता से वो डायरेक्टर हो गया। और काका जब डायरेक्टर हो गया तो डायरेक्टर साहब को बंगला मिले, मोटर मिले, टेलीफोन मिले, नौकर मिले, चाकर मिले, ये स्वाभाविक है। तो गांव के पुराने लोग आए कि काका तमें तो डायरेक्टर थया हवे, तो अमारे बहु सुख। बोले बोलो भाई, शू काम छे? काका जरा फोन करो छे, तू तारे के करने शू वांधो छे। उस आदमी ने फोन घुमाया लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। तो आदमी ने कहा, काका डायरेक्टरी कहाँ है? बोले डायरेक्टरी का क्या काम है, मैं बैठा हूँ ना, वो रसोड़े में बैठी होगी, तू फोन कर। बोले नहीं काका, मेरे को टेलीफोन करना है, डायरेक्टरी होगी तभी नंबर लगेगा। बोले ए अभण छे, हूँ तो हाथ चौपड़ी भण्यो छू, पण मारी डायरेक्टरी जे मिसिस छे मारी, ए तो हाव अभण छे। वो काका समझता है डायरेक्टरी माना मेरी पत्नी, मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरी पत्नी डायरेक्टरी हो गई। संसद जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। वो लोग बोलते नहीं नहीं काका, हमारे फोन करो छे, के तू तारे करने भाई आशु लमणाकूट, तू तारे फोन कर, घसी नाक तू तारे, कहीं वांधो नहीं, मोटी संस्था छे। के काका फोन तो करिए पण हमने नंबर बदलाई गया, के केम? एटले मारे तो डायरेक्टरी हो तो ज फोन थाय। अरे ए डायरेक्टरी ने तू मेल छाल, ए तो अत्यारे रींगणा नु शाक सुधारे छे, बटाका सुधारे छे। કે કાકા બટાકા સુધારે નહીં, શાક સુધારે નહીં, એવી ડાયરેક્ટરી નહીં જોઈએ જેમાં મારો નંબર મળે, એ ડાયરેક્ટરી। કે અલ્યા, આખું જીવન હું જીવ્યો છું, મને એ ડાયરેક્ટરીમાંથી નંબર ના મળ્યો તો તને વળી શું નંબર મળતો? તો સારી જિંદગી મેં ઉસકે સાથ દિયા હું ડાયરેક્ટરી કે સાથ, મેરે કો નંબર નહીં દિયા ઉસને, તો તેરે કો ક્યા નંબર દેગી, તું તારે ફોન કરને ભાઈ। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। देखो जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय के व्यवहार में आदमी हंसी का पात्र हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे इस जीव को जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो ये 84 लाख जन्मों तक बेचारा हंसी का पात्र हो जाता है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप हंसते, लेकिन वो पीड़ा सह रहा है। हर जन्म में इसने पीड़ा सही, जन्म की पीड़ा सही, बचपन की बेवकूफी की थप्पड़े सही, चाहे फिर किसी घर में किसी अवस्था में जन्मा हो, युवानी के काम क्रोध के आवेगों को इसने तापों को सहा, बुढ़ापे के रोगों को सहा और अंत में मृत्यु को सहता है। जब तक इस जीवात्मा को अपने परमात्मा स्वभाव का ज्ञान नहीं होता तब तक ये बेचारा अनाथ जैसा हो जाता है। दोस्त होकर दोस्त से निभाया, मित्र होकर मित्र से निभाया, साथी होकर साथियों से निभाया, पति होकर पत्नी से निभाया, डायरेक्टर होकर डायरेक्टरी से निभाया और संसद होकर संसदी देवी से निभाया, जयराम जी की, सेठ होकर सिठानी से निभाया और मामा होकर भांजे से निभाया। फिर भी जब आदमी मरता है तो अकेला जाता है, अनाथ हो जाता है। मौत अनाथ कर दे उसके पहले कोई फकीर की कृपा हो जाए, अपने नाथ के साथ मुलाकात हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मोहम्मद ने सारी रजाइयां डलवा दी फिर भी शरीर कांप रहा है। मिसिस मोहम्मद पूछती है कि ये बुखार के लक्षण नहीं है? तुम्हारी निगाहों में कुछ रूहानियत के दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नूरानी नूर की खबरें आ रही है, शरीर तो कंपित हो रहा है लेकिन लग रहा है कुछ तुमने पाया है, बताओ सच बताओ क्या हुआ था। मोहम्मद बोलते मैं प्रार्थना करते करते खो गया, अर्थात शरण हो गया। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, आवाज आई मोहम्मद कुछ बोल, मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं, ऐसे करते मैं गदगद हो गया। फिर आवाज आई मोहम्मद कुछ लिख, मैंने कहा मेरे मालिक मैं नादान ना समझ क्या बोलूं और क्या लिखूं, और बढ़ता गया। जो बोलते मैं ना समझ ना पढ़ नादान क्या बोलूं क्या लिखूं, उन्होंने जो बोला है वो शास्त्र बन गया, उनका कुरान बन गया है। रामकृष्ण जो बोले हैं रामकृष्ण वचनामृत बन गए हैं, गुरु नानक जो बोले हैं और गुरु गोविंद सिंह जो बोले हैं, गुरु हर राय या तेग बहादुर जो बोले हैं, बाबा फरीद जो बोले हैं, गुरुवाणी में 132 बाबा फरीद के पद आ गए हैं। तो मानना पड़ता है कि जब आदमी शरणागति योग ले लेता है तो फिर भगवान उसके द्वारा ऐसा बोलते हैं कि उसकी वाणी शास्त्र बन जाती है। भगवान उसके द्वारा ऐसी चेष्टा करते हैं कि वो महात्मा पुरुष गिना जाता है, महात्मा गांधी। मोहनलाल जी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया। गांधी से पूछा गया कि तुम गोलमेज मैदान में इतना क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के बीच इतना बढ़िया कैसे बोल पाए, बोले मैं थोड़े बोलता हूँ, मेरे बोलने के पहले मैं भगवान को बोलता हूँ, मेरे राम को, कि तू ही बोल तू ही बुलवा, मैं तो कुछ नहीं, मेरे बोलने के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। मेरे काम मेरा अपना निजी काम नहीं है, राष्ट्र का काम है, भारत माता का काम है, और भारत माता का स्वामी तो वो परमात्मा है, मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मेरे कार्य के पीछे भगवान का हाथ होता है। जब आप महसूस करेंगे अपना अहम और राग द्वेष छोड़कर जब काम करते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, तो आपके काम में आपके कार्य में आपके कर्म में योग मिल जाता है, आपका कर्म कर्म योग बन जाता है। मैं आपको ध्यान योग की महिमा बताता हूँ। मूलाधार केंद्र का ध्यान होता है किसी गुरु कृपा से जब, तो मूलाधार केंद्र विकसित होता है तो देवताओं के दर्शन होने लगते हैं और वो आदमी देवताओं से सम्मानित होने लगता है। अणिमा आदि दादुरी आदि सिद्धि उसको प्राप्त होती है। पटुता सहजता सरलता और वाणी का प्रभाव उसको अलग से डेवलप नहीं करना पड़ता है, केवल इसी मूलाधार के ध्यान से ही उस योगी को ये योग्यताएं प्राप्त होती है। 6 महीना अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान कराने वाला कोई योगी दीक्षित कर दे और 1 घंटा प्रतिदिन ये ध्यान किया जाए तो 6 महीने में ये उपलब्धियां होने लगती है, इसमें संदेह नहीं है। मेरा अनुभव भी और कई मेरे और मित्रों का भी अनुभव है। स्वाधिष्ठान केंद्र मूलाधार केंद्र नाभि से थोड़ा नीचे को है, वहाँ शक्ति का पुंज है, वो जितने अंश में विकसित होता है और सुदृढ़ होता है उतना ही हमारा आरोग्य लंबा समय चलता है। और यही कारण था कि पहले के जमाने में योगी लोग संत लोग सहज में मिलते थे और समाज को ये फायदा होता था, इसलिए समाज को ऑपरेशन थिएटरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, कैंसर और जलंधर और भगंधर और ये तमाम प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। आज भी जो लोग ऐसे योगियों के शिष्य हैं उनके घर में ये खतरनाक बीमारियां नहीं वत होती होगी। असामान्य आदमी के जीवन में जितनी बीमारियां होती है उतनी सत्संगी के जीवन में आज भी वो बीमारियां नहीं होती। जय राम जी। नेत्र यज्ञ की व्याख्या, नेत्र यज्ञ का प्रचार सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है कि अच्छा है, अच्छा काम है। नेत्रहीन को नेत्र मिलेगा, मोतिया वाले का मोतिया दूर होगा, झरमर वाले की बेल वाले का बेल हटेगा, अच्छी दृष्टि मिलेगी। लेकिन जिनके पास नेत्र है, नेत्रहीन को नेत्र मिले ये तो ठीक है, लेकिन जो नेत्र वाले हैं फिर भी शांति नहीं है, जो नेत्र वाले हैं उनके भी अंदर के नेत्र नहीं खुले, उनके लिए तो सत्संग का ही यज्ञ जरूरी है, साधना का यज्ञ जरूरी है। नेत्र यज्ञ तो हो रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नेत्र यज्ञ के साथ ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कीर्तन यज्ञ और सत्संग यज्ञ की भी समाज को बहुत जरूरत है। ये चर्म नेत्र यज्ञ करा दो अच्छा है, लेकिन चर्म नेत्रों के साथ साथ जिनको चर्म नेत्र यज्ञ की आवश्यकता नहीं, जिनको बाहर की आंखें ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उनकी अंदर की आंख तो अनिवार्य चाहिए। जिनकी बाहर की आंखें जन्मजात नहीं, सूरदास जैसे हैं, फिर भी उनकी अंदर की आंख खुलती है तो वे पूजे जाते हैं, और बाहर की आंखें ठीक है लेकिन अंदर की दृष्टि ठीक नहीं है तो वे असुर जैसा जीवन जीते हैं। तो नेत्र यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हरिनाम यज्ञ आदि की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से योगी आरोग्यता, पटुता, सरलता, सहजता आदि प्राप्त कर लेता है। थोड़े ही समय में उसकी चित्त वृत्ति ऊपर के केंद्र में आती है। स्वाधिष्ठान केंद्र का अगर ध्यान लगने लग जाए तो उस योगी के जीवा पर सरस्वती निवास करने लगती है। वो शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है, वह बोले तो शास्त्र बन सकता है, और वह मंत्र को उच्चारण करे ठीक ढंग से तो वह मंत्र सिद्ध हो सकता है। एक योगी एक संत मेरे मित्र थे, बिरला घाट पर रहते थे, एकदम अकिंचन नाई। उनकी उम्र 80 साल की थी, मेरी बहुत उनसे निकटता थी, तो आपस में हम एकांत में जंगल में बैठते थे, हरिद्वार के उस बांस के जंगल में बैठते थे। तब एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हें साधन काल में क्या क्या अनुभव हुआ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार किसी संत ने मेरे को मंत्र दे दिया, और अब मेरा तो न कोई घर न घाट न आश्रम न कोई मठ न मंदिर न कुछ, तो मैं तो कहां जप करूं, किसी मंदिर के ओसरी में बैठ गया जप करने के लिए। एक दिन बैठा, दूसरे दिन भी जाके वहां बैठा, तीसरे दिन जो ही जप किया तो मंदिर के घंट बजने लग गए और किवाड़े हिलने लगी, तो पुजारी भागता हुआ कि हे बाबा क्या कर रहा है, ये मेरा निजी मंदिर है, मेरा निजी मंदिर है, जा भाग जा, उसने भगा दिया। फिर हमने कहा छोड़ो, ये घंट बज गए तो क्या हो गया, किवाड़े हिल गए तो क्या हो गया, किवाड़े और घंट बजे ये मंत्र सिद्धि तो हुई, मंत्र जिससे सिद्ध होता है उस सिद्ध तत्व को जानने के लिए फिर मैंने वेदांत में छलांग मार दी। ऐसे ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से भी ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा है। आद सत्य युग आत सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो इस दूसरे केंद्र का ध्यान करने से मंत्र सिद्धि, पटुता, शास्त्र की व्याख्या और संकल्प सिद्धि आदि सद्गुण आने लगते हैं और प्राण सुषुम्ना में बहने लगता है। हमारे नाभि केंद्र ये तीसरा केंद्र है, नाभि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर, उसको शौर्य केंद्र भी कहते हैं, मणिपुर केंद्र भी कहते हैं। इस केंद्र का अगर ध्यान करे तो आदमी की बुद्धि शक्ति का तीव्र विकास होता है, और यही कारण था कि पहले के जमाने में स्कूल कॉलेज या और इतने पढ़ाई लिखाई के साधन न होने पर भी पहले के लोगों की बुद्धिमत्ता आज के विद्वानों को भी चकित कर देती है। तुकाराम महाराज स्कूली विद्या में तो दो तीन क्लास पढ़े होंगे, लेकिन तुकाराम महाराज का शौर्य केंद्र विकसित हुआ। तुकाराम महाराज के दर्शन करने के लिए छत्रपति शिवाजी अपना ताज नीचे रखकर नंगे पैर तुकाराम महाराज के चरणों में मस्तक झुकाता है। तुकाराम महाराज ने जो अभंग गाए हैं वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में एमए के विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलता है, और उन पर अध्ययन करके वो परीक्षा में पास होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कबीर जी पर पीएचडी लिखने वाले को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, लेकिन कबीर अभी आ जाए तो उनको चपरासी की नौकरी मिलना संभव नहीं, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल पास तो चाहिए आज का चपरासी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर के केंद्र विकसित हो जाए तो बाहर के सर्टिफिकेट हैं तभी भी ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो कोई उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मेरे गुरुदेव शायद 2-3 महीने स्कूल में गए होंगे, साल भर शायद न भी गए होंगे, उनके सिग्नेचर करने पर हमने देखा कि सिग्नेचर करते समय उनको बहुत देर लगती थी। अब हमारे गुरुजी अनपढ़ थे ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में समय नहीं अंतर आत्मा में समय दिया, और वो लीलाराम बापू करके सिंधियों के तो पूजनीय हुए, लेकिन मुसलमान भी उनको अपना पीर मानने लगे और लीलाराम में से लीला शाह नाम दिया गया। उसकी एक कथा है, लीलाराम बापू जब योग साधना करते थे एकाग्रता से संकल्प सिद्धि और सामर्थ्य आता है, जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का प्रॉब्लम है ऐसे झूलेलाल मंदिर और कोई मस्जिद की जमीन का आपस में टसल चल रहा था, पिछले 32 साल से प्रॉब्लम था। आखिर आगे वालों ने सोचा कि ये है धर्म की जगह है, धर्मात्मा लोगों को ही फैसला करने दो, अपन लोग ब्रिटिश शासन में धक्के खा खा के थक गए, सिविल मैटर तो ऐसे ही चलता है। सिंधियों ने कहा अच्छा जो तुम्हारी मर्जी, मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम अपने मुल्ला मौलवियों को लाते और तुम पैगंबरों को लाते और तुम तुम्हारे संत महंतों को लाओ। उस जमाने में प्रसिद्ध संत कहो अथवा उच्च कोटि के संत कहो, लीलाराम बापू का नाम था। सिंधी भाई लीलाराम बापू के पास गए और वो लोग अपने अपने उन मंत्र तंत्र जानने वालों के पास गए। वो 15-20 लोग आए अपना टूना फूना दिखाने लगे और लीलाराम अकेले। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि चपरासी अगर 25 भी हों तभी भी उन चपरासियों का फिजिकल बल चाहे बड़ा दिखे, लेकिन सिग्नेचर का बल तो राष्ट्रपति का बहुत पावर रखता है, जयराम जी की। 25-50 चपरासी सिग्नेचर कर दें और उसके विरुद्ध डिसीजन लेकर एक राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता तो पूरे राष्ट्र पर उसके सिग्नेचर का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद संभालने की मति जहां से मिलती है, उस आत्मा में जो ठहरा है उस आत्मयोगी के आगे मंत्र वाला जंत्र वाला तंत्र वाला टूणा वाला फूणा वाला अला वाला बला वाला अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू मंत्र डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू, उनका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, बहुत तुच्छ होता है। उन्होंने अपना आला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू हुर फुर डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू वैसा कुछ करके चमक ले दिखाए। लीलाराम बापू चुपचाप बैठे, उन्होंने 10-15-20 लोगों ने देखा कि ये एक बाबा क्या करेगा, अब तो ये जमीन हमने जो हड़प की है वो हमारी ही हो जाएगी, जयराम जी की। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। सिंधी लोग दो प्रकार के थे उस समय, कोई सफेद पगड़ी पहनते थे और कोई लाल पगड़ी। सिंधी में चाहे बुआ गाढ़ी पगवारा ही अच्छी पगवारा लाड़ी समाज जाए ब्यास सिंधी, ये सब मिलकर बाबा जी के आगे पगड़ी उतार के बैठे के साईं लीलाराम साईं अब हमारी लाज समाज की इज्जत की सवाल है महाराज, अब तो जमीन जमीन की जगह पर रही लेकिन हमारी धार्मिकता और हमारी इज्जत का सवाल है। जैसे ये मंदिर भी अब इज्जत का सवाल बन गया है जयराम जी की, ऐसे वो लोग भी वसाई आण इज्जत जो सवाल है, तू लज रख जा सचा पातशाह तू लज रख, बाबा नानक तू दया कर, बाबा लीला शाह तेरा भाणा मीठा लागे औखी कड़ी न देखण दे वही बाबा तू दे। उन लोगों की श्रद्धा भक्ति प्रार्थना और लीला राम बापू का योग साधन, महाराज बापू शांत बैठे 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 एक नजर डाले सामने पेड़ था नीम का, जिससे वो जमीन की हद सिद्ध होती थी, इस तरफ वो मंदिर था और उधर को वो लोग बोलते थे हमारी थी, रातों रात कब्र बना दी थी और निशाना मौजूद कर दिया था, और जरूरी नहीं कि कब्र में कोई पीर हो, जूते डाल के भी ऊपर मजार बन जाती है। मैं आपको एक कम उसकी कथा सुनाऊं तो आप चकित हो जाएंगे। बीरबल ने भी एक ऐसी मजार बना दी और अकबर वहां से जिदा करने लगा। बीरबल खूब जोरों से हंसा, अकबर बोलता है कि मैं 1100 रुपए की चादर चढ़ाऊंगा, हे पीर मेरी मनोती पूरी हो जाए। बीरबल जोरों से हंसा, बोले क्यों हंसता है, क्या तुम्हें तुम्हारी ये औकात? बोले तुम जहाँ नाक रगड़ रहे हो वहाँ कोई फीर फीर नहीं है, ये तो मैंने सड़े हुए गले हुए पुराने जूते गाड़ के ऊपर रातों रात बनवा दी थी मुजार, और तुम यहाँ मत्था टेक रहे। खुदवाया तो जूते निकले और कोई नहीं, हड्डियां भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, जूते ही जूते निकले। वीरबल ने कहा कि जहाँ पना ये तो जूते हैं, बदबू नहीं देते हैं, लेकिन सड़ा हुआ मांस और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं होता। आदमी का यकीन जीतता है, पीर क्या जीते, यकीन जीत लेता है। जयराम जी की। तो हर आज उन्होंने जो बना दिया था सज्जनों ने रातों रात कुछ मुजाहर बुझा, तो लीलाराम बापू ध्यान करके उनकी आत्मा का आवाज आया कि असली जिसका हो उसकी जय हो, ये हमारा है, ये अपने वाले तुम्हारे वाले अपने वाले साधु के हृदय में नहीं होता। साधु का हृदय तो प्राणी मात्र को परमात्मा का संतान समझता है। तो हकीकत में क्या है वो बाबा जी को पता चल गया। तो बाबा जी अनहद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे, चौथे केंद्र में ध्यान को एकाकार करके पांचवें केंद्र में वृत्ति लाकर बाबा जी ने आदेश दिया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरे को आज्ञा किया कि चल चबूतरा चांगदेव का स्वागत करने के लिए, तो मिट्टी का चबूतरा चल पड़ा था, ऐसे लीलाराम बापू ने नीम के पेड़ को आदेश दिया, ओ निम हल होते अली वे हल, तू चल वहां जाके बैठ। नीम का पेड़ चलने चलकर वहां पहुंच गया। फिर तो महाराज मुल्ला मौलवी और उनके आगे वान और पीछे वान सबके सब गले में कपड़ा डालकर, तुम हिंदुओं के ही पीर नहीं हमारे भी संत हो, आज से आपका नाम लीला राम नहीं आपका नाम लीला शाह। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा, बचपन में ही
घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा,
तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान
तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में।
नदी पलट सागर में आई वृति अगम था,
नदी पलट सागर में आई वृति अगम था।
आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया,
तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया।
नदी पलट सागर में आई वृति अगम था की,
नदी पलट सागर में आई वृति अगम था की।
तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह,
जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह।
दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी,
दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी,
जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी,
जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी।
जीवन मुक्त विचरते थे ये दिल है शहंशाह की,
जीवन मुक्त विचरते थे ये दिल है शहंशाह की।
आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। जय जय लीला शाह,
जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह।
महाराज इस ध्यान से अगर आदमी आगे बढ़ते बढ़ते स्वाधिष्ठान केंद्र में रुकता है तो अप्सरा देवी देवताओं के दर्शन करता है और मृत्यु के रहस्य को समझ जाता है। इस ध्यान को करने वाला साधक सकल मनोरथों को सिद्ध करने की योग्यता पा लेता है। उसके तो मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसा योगी साधक दूसरे के संकल्प में अगर अपना सहयोगी संकल्प मिला देता है तो उसका मनोरथ भी पूर्ण होने लगता है। हकीकत में मनुष्य मात्र को मनोरथ पूरे करने की क्षमताएं और शक्ति है, लेकिन वो संकल्प के ऊपर विकल्प करके अपने मनोरथों को काट देता है, अथवा तो अपने हीन कर्मों से, हीन विचारों से मनोरथों को दुर्बल बना देता है। घटित घटना है मद्रास की 1956 की। राजगोपालाचार्य सीएम थे तब की बात है। बारिश का अभाव होने के कारण मद्रास का रेड स्टोन लेक सूख गया था। नगरपालिका थक गई, नाक में दम आ गया, पानी कैसे पहुंचाएं। राज्य सत्ता ने, शासन ने अपने जो कुछ टैंकर दौड़ाने थे, जो कुछ करना था वो करके आखिर उसने भी अपने हाथ ऊंचे करने स्वीकार कर लिए। राजगोपालाचार्य ने जाहिरनामा, राजगोपालाचार्य ने अखबार वालों को और संदेश वाहकों के, वाहक साधनों के द्वारा प्रजा को अपील की कि नगर परिषद, नगर पालिका तो थक गई, लेकिन हमारा राज्य बल भी उस परमात्मा के बल के आगे छोटा है, तुच्छ है, नन्ना है। अब हम परम राज्य की सत्ता पाएंगे। नगर पालिका राज्य सत्ता का दरवाजा खटखटाती है, राज्य सत्ता केंद्र का दरवाजा खटखटाए, लेकिन यहाँ केंद्र की भी दाल नहीं गलेगी। हम असली केंद्र का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। जय राम जी की। फलानी तारीख सुबह 4 बजे जनता जनार्दन एकत्रित हो जाए दरिया किनारे मद्रास के। मैं और मेरे साथी मित्र मंत्रिमंडल वे भी होंगे और नगर पालिका के लोग भी होंगे, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनिवार्य आना होगा। हम असली सरकार को प्रार्थना करने के लिए फलानी तारीख दरिया किनारे 4 बजे एकत्रित होंगे। महाराज आयोजन के अनुसार भगवान की अभिषेक से पूजा शुरू हो गई। कहीं कीर्तन मंडलियों ने कीर्तन चालू किया, कहीं षोडशोपचार से भगवान नारायण की पूजा हुई, तो कहीं वरुण देवता जी के लिए वरुण प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयोग किए गए, तो कहीं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ याग आदि किए गए। ऐसा करते करते शाम के 3 बजे आकाश में एक भी बादल नहीं। क्या पियेंगे, कैसे जियेंगे, ये सवाल था राजगोपालाचार्य के सामने। ये ऐतिहासिक बात है। राजगोपालाचार्य सीएम थे मद्रास के, संसद से पूछ के देखो। जयराम जी की। 3:30 बजे कार्यक्रम सब संपन्न हुआ। विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करके पूर्णाहुतियों का नारियल अर्पण कर दिए। कीर्तन वालों ने कीर्तन किया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, जप वालों ने जप किया, पाठ वालों ने पाठ किया, स्तोत्र वालों ने स्तोत्र किए। सबको जो जो सौंपा गया था उन्होंने अपना कार्यक्रम संपन्न किया। अब आखिरी विधायक का थोड़ा सा प्रार्थना सहित संबोधन राजगोपालाचार्य कर रहे हैं उस दरिया के किनारे खुले आम। हम लोगों ने सुबह से लेकर वरुण देवता को, भगवान नारायण को और भगवान इंद्रदेव को अपनी अर्जी दे दी है, अपना प्रार्थना पत्र दिया है। मनुष्य की अपनी सीमा है और भगवान की शक्ति असीम है, और मनुष्य का मन भगवान की असीम शक्ति से स्फुरफुराता है। हम लोगों का भाव शुद्ध और प्रार्थना सच्चे हृदय से होगी तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। अभी तो चाहे कोई एक बादल भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके हाथ की तो ऐसी कारीगरी है कि वो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम है। इसलिए कोई उम्मीद मत मिटाना, श्रद्धा मत हटाना। आप अपने अपने घर जाइएगा। मैं तो भगवान को और आपको फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें भगवान को और भगवान हम पर करुणा करे। हे वरुण देव, अब हमारे बस की बात नहीं है। इंद्र देव, आप मेघों को भेजने की कृपा करिए। हे आदि नारायण, प्राणी मात्र के हृदय में तुम हो। हमारे कोई भूल पाप अपराध हो गए हो तो मूंगे गायों को और पशुओं को देखकर भी आप बरसने की कृपा करो, और निर्दोष लोगों पर आप करुणा करके, हे करुणा वरुणालय, आप अपने उदार हृदय से उदार नीति से हम इन अनाथों की मांग को स्वीकार करने की कृपा करना। गदगद वाणी से भरे कंठ से आंखों में आंसू हैं, कंठ में गदगदता है, हृदय भरा है भगवत भक्ति से। वह सीएम वह मुख्यमंत्री मद्रास का प्रार्थना करते करते मानो भाव विभोर हो गया, जनता का भाव भी उसने प्राप्त कर लिया। एकाध क्षण उनका हृदय शांत रहा होगा, अनहद सुनो बड़ भाग्या में उनकी वृत्ति पहुंची होगी। प्रार्थना करके वे अपने अपने घर गए, भोजन बनाया पाया। शाम को देखते कोई बादल वादल नहीं, संध्या हो गई, तारे टिमटिमाते हैं और तारों की टिमटिमाहट कहीं कहीं नहीं दिखती है। थोड़े थोड़े बादल एकत्रित हुए, लोग सो गए हैं। ठीक रात को 2 बजे मद्रास में ऐसी जोरों की बारिश पड़ी, ऐसी जोरों की बारिश पड़ी महाराज, क्या कहना। जो पूरे बारिश में रेड स्टोन लेक भरता था, वो रात्रि को 2 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक बारिश ऐसी पड़ी, रेड स्टोन लेक तो भर गया लेकिन छलका ऐसा छलका और बारिश ने चाहूं तरफ से ऐसी कृपा की दी कर दी कि मद्रास की सड़कों पर नावें चलानी पड़ी। ऐसी नौबत आ गई, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारा मन एक कल्प वृक्ष है, विष को अमृत बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है और अमृत को विष बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है। कल मैंने परदेश के वैज्ञानिकों के प्रयोग का एक दृष्टांत आपको दिया था, इसलिए आप कृपा करके अपने मन को दुष्संगति दुष्कर्म अथवा हीन विचारों से अपने मन को गंदा मत करिए। हजार हजार गलतियां हो गई फिर भी भगवान की शरण लेकर दोबारा गलती न करूंगा और भगवान नाम का सहारा लोगे तो आपका मन निर्दोष होने लगेगा। योगियों का कहना है कि मन जब अनहद नाद अनहद केंद्र में आता है तो उसको अप्सराओं आदि उस पर मोहित होने लगती है, वो त्रिकालदर्शी होने लगता है। दूरदर्शन दूर श्रवण और आकाश गमन आदि की अंतवाहक शरीर के द्वारा उसकी सिद्धि पा लेता है, उसे भूचरी सिद्धि भी प्राप्त होती है और वह योगी ब्रह्मा विष्णु महेश जिस आत्मा परमात्मा में रमण करते हैं उस आत्म सुख में वह योगी त्रिलोकी में विचरण करता हुआ भी अपने आत्मा में विचरण करता है। इस योग को ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता के 6th अध्याय में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि ऐसा योगी देवों का देव होता है। वह योगी जिस धरती पर जहाँ कदम रखता है वह धरती पूजने योग्य हो जाती है। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु ने कहा है, हे राम जी, इक्ष्वाकु राजा ने जब मनु महाराज का आवाहन किया तो मनु महाराज ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन तू नित्य अंतर्मुख हो और फिर तू जिस ईंट पर पैर रखेगा वो ईंट पवित्र हो जाएगी, जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी और जिस पुरुष के तरफ तेरी दृष्टि पड़ेगी वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान ऐसा महान है। भगवान शिव ने वशिष्ठ को कहा कि 13 निमेश इस अंतर्यामी आत्मदेव का ध्यान करने से पे यज्ञ का फल होता है, 17 निमेश उस परमेश्वर अंतर्यामी ईश्वर में गोता मारने से राजसु यज्ञ का फल होता है, 1 मुहूर्त अथवा 1 पहर उस पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में रमण करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, हे निष्पाप मुनि, जिन साधु संतों का दर्शन करने से संसारी लोक निष्पाप होते हैं, जिन संत महात्माओं का दर्शन करने से संसारी लोक पवित्र होते हैं, ऐसे संत भी उस परमेश्वर के ध्यान से ही पावन होते हैं और पावन करने का सामर्थ्य लाते हैं। नानक जी ने कहा, अनहद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। तो और योग करने पड़ते, इस योग के लिए करना नहीं पड़ता है, थोड़ा ही किसी महापुरुष का संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लग जाए, प्रसाद मिल जाए तो फिर मन को जरा स्वाद आता है, अपने आप योग में लग जाता है। जैसे सिगरेट का आदि आदमी पैसा खर्च के भी सिगरेट पी लेता है, भंगेड़ी ना कहने पर भी भांग पीता है, शराबी ना कहने पर भी शराब पीता है और लवर लवरियों को कितना भी समझाओ फिर भी रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, ऐसे वो तुम्हारा मन रजिस्टर का बाप परमात्मा के साथ मैरिज कर लेता है। स्वाद आ जाए भैया, बस मन को अगर परमात्मा सुख का स्वाद आ जाए तो जैसे लवर लवरियां कुल रीत रिवाज सब को छोड़कर भी धाक डुम जंप मार देते, फिर चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बार जंप मार देते, परिणाम तो दुनिया जानती।